ओम शांति। इस सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य के लिए भगवान के इस रचे हुए महायज्ञ में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले बाबा के विशेष रतन हम सभी के अति प्रिय, अति स्नेही, आदरणीय चंद्रपाल भाई जी आज हम सभी के बीच पहुंचे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कोटों में कोई में भी कोई, तो आप एक ऐसी विशेष आत्मा हैं जो कि आपने अपने युवा काल में, जो कि सांसारिक दृष्टिकोण से संसार की सुख सुविधाएं अर्जित करने का समय होता है या सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने का विशेष समय होता है, उस युवा काल में आपने उन सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने के बजाय अपने आप को, अपने जीवन को इस भगवान के रचे हुए महायज्ञ में समर्पित किया, तो आप एक ऐसी विशेष आत्मा हैं। आप लगभग 35 वर्षों से भगवान के इस रचे हुए महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए वर्तमान समय आप पांडव भवन में, आवास निवास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महायज्ञ में सेवा करने वाले आत्माओं की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, यज्ञ पिता और यज्ञ के प्रति वफादार बनकर रहना, यज्ञ की हर आत्मा के प्रति स्नेही और सहयोगी बनकर रहना, सर्व को संतुष्ट करना और स्वयं को भी संतुष्ट रखना, इन विशेषताओं से आप परिपूर्ण हैं। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे कि आप अपने इस ब्राह्मण जीवन के जो दीर्घकालीन अनुभव हैं, उन अलौकिक अनुभवों से हम सभी के इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित करने वाले अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम सभी के मध्य शेयर करेंगे हमारे आदरणीय चंद्रपाल भाई जी।
ओम शांति। तो चंद्रपाल भाई जी से पहला प्रश्न है, आप ज्ञान में कब आए, कैसे है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी जिससे आपका परमात्मा के प्रति प्यार जागृत हो?
ओम शांति। ज्ञान में कब आए, कैसे आए, क्या, कौन सी बात अच्छी लगी? 1978 अक्टूबर महीना है, गुरु वो प्रकाश उत्सव तो होता है ना, गुरु गोविंद सिंह का, वो दिन गुरु पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उस समय ज्ञान मिला। मेला लगता है हमारे गांव में बहुत बड़ा, वो जो 15 दिन तक चलता है, तो वहां ही एग्जीबिशन लगी हुई थी। हम जा रहे थे मंदिर में, लेकिन मंदिर से पहले ही अपने राजू भाई जी, इनके पिताजी और चाचा जी ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, और उसको देखने गए तो मंदिर जाना भूल गए, सारा दिन उसी प्रदर्शनी को देखते रहे, घूम घूम के। एक बार चक्कर पूरा होता रहा, दूसरी बार दूसरे ग्रुप के साथ ऐसे ही देखते रहे, थोड़ी देर के लिए गए मंदिर पे, फिर वापस। वो 3 दिन एग्जीबिशन चली, 3 दिन मेरा वहीं गया बीता। उसके बाद शाम को जब प्रोग्राम रखा था तो बोला, बताया कि अगर इससे अधिक जानकारी लेनी है तो पास के ही गांव में, 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, वहां आ जाना। तो फिर वहां से हम गए, चार लोग में मैं गया था, मेरा बड़ा भाई और जीजा जी और उसका भाई, चार लोग गए, चारों ने कोर्स किया एक साथ। लेकिन उन लोगों का पार्ट तो अपना पहले से जो फिक्स था वही चलता रहा, मेरा पार्ट इधर का बना और हम रेगुलर हो गए। ठंडी के दिन आजकल के ही दिन थे, फिर रेगुलर हो गए। लेकिन मैं इससे पहले की पूर्व तैयारी जो थी वो मैं भी सुनाना चाहूंगा। का कुछ समय पहले, दो चार साल पहले ही हमको एक घर से वैराग्य आया हुआ था कि हम कहीं जाके चले जाएं, और एक बार प्रयास भी किया। मैं और मेरे गांव का एक और साथी घर से निकल के गए भी, लेकिन जाएं कहां कोई रास्ता न मिला। तो जाके 25-30 किलोमीटर पर रिलेटिव के घर में पहुंच गए, भाग के गए घर से सन्यासी होने के लिए, लेकिन चले गए उधर। फिर वहां से फिर वापस आए तो वो भाई ने आकर के तो अपने सबके कपड़े पड़े बदल लिए और अपने घर में ही जब उतर आसन लगा के बैठ गया। लेकिन मेरा पार्ट जैसा था वैसा ही रहा। चलते चलते फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा मेला था, तो वहां से मैंने कुछ किताबें धार्मिक खरीदी और उनको पढ़ने लगा, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए इच्छाएं और तीव्र होती गई। कैसे भगवान मिले, कैसे ईश्वर मिले, क्या करना है, ये निश्चित नहीं हो रहा था। तो एक तो नारद मोह, सन्यासियों के बारे में कह सकते हैं कि साधु भी था नारद जी, उस कैसे कैसे परीक्षाएं आई सबको पता है कि वो भी कैसे फंस गया, और विष्णु ने, भगवान ने ही उसके लिए माया रची और वहां जाके वो फंसा। तो ये उसको भी पढ़ते थे, और एक उसमें गीत दूसरी किताब में था, उसको पढ़ के मुझे आश्चर्य होता था, और उसको मैं दिन में कई बार पढ़ता था। वो गीत की लाइनें अभी भी मुझे याद हैं। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। इस प्रकार से पूरा गीत है। तो वो पढ़ते हुए कई बार पढ़ता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, करूं क्या, कैसे भगवान, क्योंकि मेरा परिवार बचपन से ही कबीरपंथी था, और मैं छोटा ही रहा होगा उस समय मेरे पिताजी ने ले जा करके कुछ कान में मंत्र पहनाया और वो तुलसी की माला पहना दी थी। तो मुझे, लेकिन मंत्र तो मुझे याद नहीं था। फिर बाद में पूछा तो उसने बताया सतगुरु की महिमा ही है, वो आरती वगैरह करते हैं और महिमा सतगुरु की ही करते हैं। तो वो भी मैं, आरती तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन ये आरती जो मैंने किताब से पढ़ी थी वो उसको बार बार पढ़ता था। तो ऐसे ही एक साल बीता, दो साल बीते, तब जाके ये प्रदर्शनी लगी, तो मैंने खुद लगा कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, और ऐसे मुझे ज्ञान मिला। और उन दिनों में ठंडी में गर्म पानी और ये सब साधन तो हुआ नहीं करते थे, एक किलोमीटर दूर गांव था, बीच में तालाब था मंदिर पे, तो गांव से आकर के स्नान वगैरह वही तालाब में ही करते थे, करके फिर सीधा क्लास में जाते थे। तो ज्ञान तो हमें इस प्रकार से 78 में मिला। एक साल वहां फिर युक्ति रची मधुबन आने के लिए चलता रहा। मधुबन आने की भी एक मेरी प्रक्रिया जो है, हिस्ट्री है, वो भी एक विचित्र है, क्योंकि हमारे जो टीचर थे मधुबन आने के, वो भी समर्पित होने के लिए उनकी भी प्रक्रिया में बहुत विघ्न पड़े थे। तो इसलिए उन्होंने मेन सेंटर जो है, मेन जोन है या सेंटर कह सकते हैं, उससे दूर ही रखा, हमको बचा के रखा कि वहां नहीं जाने का, आप मधुबन आ जाओ डायरेक्ट। क्योंकि वो यहाँ आ गए थे, मधुबन में रहने लगे थे, लेकिन टीचर उनकी ओर लेकर के वहां जाके छोड़ दिया गांव में, और ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ा जिसका नाम तो विश्वनाथ था, लेकिन था पूरा विश्वनाथ। हाँ, वह यहाँ से ले जाके उनको कहा कि भाई अब तुम यहाँ रहोगे। तीन लोग थे, चाचा जी थे और उन बड़े भाई और एक बहन थी। बोला तुम किराए पर मकान लो, नौकरी करो, खर्चा भी करो, सेंटर को भी दो और सेवा भी करो। तीन चार साल उन्हों का अनुभव इस प्रकार से बीता, आखिर किसी भी प्रकार से वहां से युक्ति से छूटे थे, इसलिए मुझे सेंटर पे जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा कि वहां नहीं जाना, लेकिन मधुबन आना है। तो मधुबन आए कैसे, ना तो हम कभी ट्रेन में बैठे थे, ना कहीं बाहर कभी गए थे, तो अब जाएं कैसे। तो उन्होंने लेटर के द्वारा, उन दिनों और कोई तो साधन था ही नहीं, चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी से उन्होंने बताया कि दिल्ली में मेला लग रहा है, जो आज की मुरली है 81 वाली, तो 80 में ही सब मेला शुरू हो गया था, तो उसमें आ जाना, और हाफ एक साइड के टिकट पर रिटर्न टिकट है, तो आप वहां जाके लखनऊ से मधुबन में आने के लिए टिकट बना लीजिए, उनके साथ में आ जाओ। अब लखनऊ कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता, गांव में रहते थे। तो अभी गांव वाले कुछ लड़के वहां मजदूरी वगैरह करने के लिए जाते थे, हमारे साथी लोग ही कह सकते हैं, तो उनके साथ फिर मैं जब मधुबन आना था, तो कैसे आए क्या करें, ना कहीं सेंटर देखा है ना कहीं बाहर गए हैं, एक समस्या। फिर वहां गए तो अभी वो लोग तो काम करते थे, हम तो ऐसे कुछ किया नहीं, कुछ लोग उसमें से छोटी सी दुकान या सिर पे टोकरा लेके मूंगफली या कुछ ऐसे लेके बेचते थे, वो गली गली घूमते थे, और कुछ ऐसे लेबर्स का काम करते थे। तो मैं भी उनके साथ में ही मधुबन आने के लिए गया 15 दिन पहले, जब मधुबन आना था उसके 15 दिन पहले, क्योंकि घर में भी बताएंगे अगर उनको कि हमको मधुबन जाना है तो छुट्टी नहीं मिलेगी, जाना तो मधुबन है, कैसे जाएं। तो फिर उनके साथ हम भी जाते हैं काम करने के लिए, घर से छुट्टी लेकर के 15 दिन पहले ही वहां गए लखनऊ। लखनऊ में फिर गली गली अभी करें क्या, और सेंटर भी ढूंढना है, कोई पता भी नहीं है, तो सेंटर ढूंढने के लिए वो लड़कों के साथ जो टोकरी लेके घूमते थे ना, हमने भी वही साधन अपनाया और टोकरी लेके गली गली घूमने गए। पहले दिन ही गए 1 किलोमीटर दूर, तो झंडा दिख गया, बहुत खुश हो गया कि यहाँ बाबा का सेंटर है। फिर मैं सवेरे सवेरे, क्योंकि सब पता तो है सुबह सुबह क्लास होती है, तो मैं सीधे सीधे वहां ही झंडे पर वाले स्थान पर गया, ठाकुरगंज में जेटली के घर में पाठशाला थी, तो उस पाठशाला में मैं सवेरे सवेरे ही गया। मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, मुझे मधुबन जाना है, ऐसे ऐसे मुझे बुलाया है कि वो दिल्ली में आएंगे और हम उनके साथ चले जाएंगे, हमको टिकट चाहिए, वो वाला टिकट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो नहीं है, आप सवेरे सवेरे खुर्शेद बाग, वहां से 10 किलोमीटर दूर है, वहां आ जाना, तो वहां रामोतार भाई से मिलेगा टिकट। तो वहां गए, अब वहां जाके तो उन्होंने उस दिन वो आए नहीं थे वहां, उन्होंने फिर बोला कि कल सवेरे आपको ठाकुरगंज जो मेन सेंटर है, भगवती दादी रहती थी वहां पर आएंगे, गुरुवार है तो वहां आ जाना। फिर वहां गए सुबह सुबह, एक रिलेटिव गांव का ही जो था वो रिक्शा चलाता था, उसको मैंने ये बताया, तो फिर वो सुबह सुबह मेरे को रिक्शे में लेकर के वहां गया पहले दिन, दूसरे दिन वहां लेके गया। तो ऐसे अपना काम भी हो रहा था और ये भी हो रहा था। फिर वहां मिले, बोला नहीं यहाँ तो नहीं है फार्म, वहां खुर्शेद बाग में दोबारा आना तो वहां ही मिलेगा। फिर वहां तीसरे दिन फिर गए, तो फार्म भरा, हाफ टिकट पर, उस समय बहुत सारे कोई रेलवे का था तो उसने हाफ टिकट दिल्ली के मेले के लिए, ऑल इंडिया के लिए टिकट जारी किए थे कि एक साइड का किराया और रिटर्न टिकट था। फिर मेरे को तो खैर आना, रिटर्न जाना ही नहीं था, तो मैं वहां से निकला ट्रेन से, शाम को थी और सवेरे पहुंचा। अब लखनऊ ही नहीं देखा था, दिल्ली क्या जाने इतना बड़ा शहर, अब कहां रुके थे। एक मुसलमान का कुछ था हाल, हमारा पूरा ग्रुप वहां ही रुका, और वहां रुक के क्योंकि बसों में, वहां की गांव की बसों में बैठते थे, दिल्ली की बसें तो रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो फिर वहां से, और लाल किला काफी दूर था तो वहां से आना जाना करते थे। दो दिन वहां थे, तीन दिन, तो पहले तो बाबूजी से बात की थी तो कि भाई उसी साथ बोगी बुक की थी उसमें चले जाना। फिर जब चलने का समय हुआ, मेरे को बोला सामान लेके आओ, मैं मेले में पहुंचा सामान लेके, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मना किया तो फिर रिटर्न गए। दूसरे दिन फिर महेश बाबूजी अपने मधुबन की ये आ रहे थे, बोला इनके साथ में आ जाना, तो हम फिर इनके साथ आने के लिए। लेकिन जब सुबह सुबह रिटर्न जा रहे थे तो आगे के गेट से उतरने के बजाय पीछे वाले गेट से हम उतरने लगे, बस तो रुकी नहीं, हम गिर गए, इधर इधर सब जगह चोट लग गई। ये परीक्षाएं, तब सभी ने कहा भाई आप नहीं जाओ, तुम्हारे तो चोट लग गई है, खून बह रहा है। मैंने कहा जाना तो है, इतनी मुसीबत से हम आए हैं, मधुबन जाना है, क्योंकि गांव से निकले थे तो सब साधन भी वही, कैसे खाना खाएंगे बनाएंगे सब, तो वो भी साथ में मेरे था, पेटी में वही भरा हुआ था, कपड़े दो तीन जोड़ी थे, ज्यादा थे नहीं, एक ड्रेस तो वहां से लिया था बाग। तो फिर वहां से हम गिर गए, तो फिर दूसरे दिन वहां से लौट के आए, फिर सामान लेके बोला कि आप स्टेशन पे डायरेक्ट आ जाना, हम भी आ जाएंगे। तो महेश भाई के साथ में दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के और मधुबन आ गए। मधुबन में मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों आए, कहां से आए, क्या हुआ। राम श्लोक नहीं मिला क्योंकि हम मनोहर दादी के साथ में आए थे, तो वहां से स्टेशन से अपना तो क्या है, अपना तो एक पेटी थी, वही खाने पीने के बर्तन और ये सब साधन जो था, कि मधुबन में वहां भी जाएंगे शायद कुछ तो वो सब साधन के साथ साथ थे। तो फिर यहाँ आके सामान मरो दादियों के सामान और ग्रुप था तो सामान उठा उठा के रखते रहे, हमको किसी ने पूछा नहीं। रामश्लोक ने, अशोक था, अशोक भाई अजमेर वाला, उसने एरोप्लेन में भेज दिया, वहां जाओ रहो रहो जाके। आके फिर मैं यहाँ रह गया। फिर दादी शांतामणि ने पूछा आपका क्या प्रोग्राम है, 5-6 महीना जब हो गए सेवा में, तो मैं कहा दादी मैं तो घर से फ्री हूँ, जो जब तक सेवा है तब तक रहेंगे। तो बोला ठीक है तुम रुको सेवा में, ऐसे शांतामणि दादी ने ऐसे पहले ही बाहर में बोल दिया। मैं कहा ठीक है। फिर राजू भाई के पिताजी हर 6 मास में एक बार घर जाते थे, फसल के हिसाब से खेती फसल तैयार होती थी, तो उन्होंने बोला चलो चंद्रपाल। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। बोला तुम नहीं जाएगा तो तुम्हारा पिताजी मेरा सिर ही तोड़ देगा, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना ही है। फिर ठीक है तैयार हो गए, फिर गए, फिर उनके साथ में ही वापस 1-2 महीना रहते थे, 2 महीने के बाद वापस आते थे और फिर वापस आ गए। फिर ऐसे ही रहते रहते मधुबन में मेरे को रहने लगा। फिर तीसरी बार जब गए तो थोड़ा मुझे टाइम लगा था, जब मैं पहली बार आया था मैं 20 साल का था, लेकिन जब ये प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे को पूरा बचपन याद है, मैं कैसे पढ़ने के लिए भी नहीं जाना चाहता था स्लोगन ही अलग था हमारा, लेकिन पढ़े लिखे की ऐसी तैसी पियो दूध चराओ भैंसी, वो स्लोगन था। हाँ, लेकिन उसमें भी कहावत है ना, संगत ही गुण आवे ही संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक मोल बिकाए। तो ऐसे ही दोस्तों का संग था, सब जाने लगे थे तो वो बोले कि हम स्कूल चलते हैं, आप भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बुला लेना। हम तो सवेरे सवेरे खेती में चले गए थे, वहां से बुला के ले गए, तब से फिर जाना शुरू कर दिए।
आपको यहाँ लगभग 35 वर्ष रहते हो गए, तो आपने यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में सेवा की?
मेरा लगभग सेवा तो यही रही है, लेकिन बीच में शुरू की जो पहली सेवा थी अकोमोडेशन, जिस डिपार्टमेंट में हूँ यही था। लेकिन एक भाई हम यूपी का ही था जो सब्जी डिपार्टमेंट में था, उसका घर से बुलावा आ गया, वो चले जाने के कारण मैं करीब 5-6 मास सब्जी डिपार्टमेंट में सेवा की। उस समय तो सब्जी इतना बड़ा घर भी नहीं था जितना बड़ा अभी है, सब्जियां जहां हम पानी पीते हैं यही आंगन में सब्जी काटी जाती थी, और जो टोली पैकिंग का सामने वाला इस दादी किचन के बाजू में है, ये सब्जी डिपार्टमेंट हुआ करता था। और यहाँ से सब्जी वो जो ये ट्रॉली होती है ना, नगर पालिका के कचरा उठाते हैं बगीचे वाले में, अभी भी है शायद, तो ये वाली ट्रॉली में सब्जी भर के वहाँ ले जाते थे। सुबह 4 बजे हम तैयारी करते थे और 4:45 सब योग पूरा होने के बाद सब वहीं आते थे पानी पीने चाय पीने, तो सभी को बुला के पकड़ के तो वो कटवाते थे सब्जी। सुबह सुबह कट जाती थी और फिर दिन में आती थी दोपहर की नाश्ते के बाद। ये 2 टाइम खास होते थे, अगर शाम को कोई सब्जी आ गई तो उसको कटवाते थे, लेकिन नहीं उसके पहले यही 2 काम 2 टाइम हो जाते थे। फिर 10 बजे तक हम 10:30 11:30 के अंदर फ्री हो जाते थे, तो भोजन खा के या भोजन लेके दोपहर को सीधा पहाड़ी पर चढ़ जाते थे 1-2 लोग मिलके, वहाँ ही या तो खाना खाते थे वहाँ या वहाँ ही आराम करते थे। मैं पहले शुरू में पांडव भवन में रेस्ट किया ही नहीं, रेस्ट किया दिन का पहाड़ों पर, ऐसे वो दिनचर्या थी। फिर वो 5-6-7 मास ऐसे बीत गया। फिर जब इनका जाने का घर टाइम हो गया, घर में वापस गए भाई साहब के साथ में, तो रिटर्न आए फिर अपनी जगह पर वहीं जहां थे। तो यही डिपार्टमेंट है अकोमोडेशन। इसके साथ साथ में सेवाएं, एक सेवा तो मेरी शुरू से फिक्स हो गई थी, क्योंकि पहले प्रेस डिपार्टमेंट मधुबन में नहीं था, तो बाजार में कपड़े प्रेस देते के लिए देते थे, तो वो कपड़े मैं ठीक करके गिनती करके प्रेस के लिए बाजार में देता था और वो लेके आता था, तो लेकर के कपड़ा सॉर्ट करता था। ये बड़ी सेवा मानी जाती थी। उससे पहले अपने 4-5 का ग्रुप था, राजू भाई, पाठक, रमेश, गोलक, ये सब मिलके पाठक कपड़ा लेने और देने का काम करता था, बाकी मिलके सब सॉर्ट करते थे। अभी भी जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नंबर पे रखते हैं, पहले रतन मोहिनी दादी का जो ऑफिस है यहाँ पर कपड़े रखते थे सारा दिन, गोपी बहन मुरली लिखती थी वहाँ पर, स्टेंसिल काटती थी सिंधी की, और बाकी सुबह शाम का हमारा काम होता था। तो वो कपड़े सॉर्ट करके पहले कपड़े ले देना और कपड़े फिर वापस लेना फिर सॉर्ट करना, ये 3 काम मेन थे। इसमें कई प्रकार के, कभी किसका कपड़ा इधर से उधर भी हो गया या नहीं लाया या वो तो समस्या थी, आज भी बनी हुई है बरकरार।
तो
और इसके साथ साथ वहाँ होते हुए मैं विशाल भवन में भी सेवा की, जब नया नया बना था विशाल भवन का तो भी बहुत काम था, तो वहाँ भी काफी समय गोकुल के साथ में सेवा की। गोकुल भाई अभी ज्ञान सरोवर में है, जूनागढ़ का, जूनागढ़ का, तो वो था उस समय, उसके साथ में किया। उसके बाद फिर जब ये सुखधाम की जगह पुराना मकान था, उसका नाम था एक चक्की पर लगा हुआ है ऐसे घूमने वाला, तो वो चक्कर घूमता था, तो चक्री हाउस उसका नाम था। तो इस चक्री हाउस में मैं जब तक पुराना मकान रहा तब तक मैं वहां सेवा किया। फिर जब उसको नया मकान बनाने के लिए तोड़ दिया तो फिर मुझे विज्ञान भवन में सेवा करते थे, और बाकी चार मास हम पहरा देते थे रात में। हमेशा हर साल शुरू से यही था कि बरसातों में सीजन कुछ होती नहीं थी, तो तीन चार मास रात में पहरा देते थे ओम शांति भवन में या पांडव भवन में। तो इसके बाद फिर जब मेरा ज्ञान विज्ञान भवन का काम टाइम सेटिंग नहीं होता था, क्योंकि वो कपड़े भी बहुत बढ़ गए थे, तो और उसका वेट करना इंतजार करना, तो तीन चार घंटे मेरा उसी में जाता था, और वहाँ की सेवाएं भी तीन चार मकान थे। तो फिर मैं वापस अशोक भाई जाने वाला था, तो फिर मैं दादी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा सेटिंग नहीं हो रहा है, तो दादी ने मुझे बोला कि आप ओम शांति भवन में गाइड करने जाओ। मैं आया, सारा देखा लिटरेचर में सेवा के लिए। जब एक दिन मैंने सेवा भी यहाँ ओम शांति भवन में की, अशोक को पता चला कि दादी ने उसको वहां भेजा, तो सीधा यहाँ आया, मेरे को यहाँ से ले जाके सीधा दादी के पास ले गया कि भाई मेरे को ये चाहिए, वहां सेवा नहीं। तो तब से ये 86 या 87 रहा होगा, तब से वहीं डिपार्टमेंट जो अभी है वहां ही सेवा कर रहे। इसके बीच में भी सेवाएं आई, लच्छू दादी से की सेवाएं वो भी मेरे को दी, तो वो तीन चार पांच साल या ज्यादा रहा होगा, तो वो मधुबन वालों के संपर्क में आने का और सबसे मिलने का ये अनुभव रहा देने का।
तो ये जो आपका स्लोगन था पढ़े लिखे की ऐसी तैसी हम तो चलाएंगे भैंसी, इससे मुक्ति कैसे पाई?
वो दोस्तों के कारण बताया ना, दोस्तों ने पढ़ने के लिए बुलाया तो हम चले गए।
फिर नहीं, यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई में अभी आप देखते रहो, जब देखते वहाँ मुरली पढ़ते सवेरे सवेरे, तो इस कैसे ज्ञान से आपका लगाव हो गया फिर?
नहीं, फिर तो वहाँ पढ़ाई वहाँ की लौकिक भी पढ़ाई पढ़ने लगे, तो वहाँ की भी पढ़ाई एक बीमारी के कारण मेरी वो लौकिक पढ़ाई भी छूटी। तो उसके बाद तो फिर जब बाबा की पढ़ाई, बाबा का तो मिलना ही था यही सारा दिन। फिर जब हम ज्ञान में आए तो मुरली सुनते थे, फिर हमको जाने का घर में मन ही नहीं होता था, तो वहीं 10-11 बजे तक बैठे रहते थे। अब मधुबन में आना है तो हमें पैसे भी चाहिए और सब फ्री भी चाहिए, घर वालों से छुट्टी भी ना लेनी पड़े। तो इसके लिए भी मुझे युक्ति बताई कि भाई तुमको अगर ऐसा ऐसा कुछ काम करो जो तुम हर प्रकार से फ्री रहो, तो फिर मेरे को और कोई तो धंधा समझ में नहीं आया, तो रेडीमेड कपड़े खरीदे और मार्केट में ले जाते थे, वो बेचते थे, तो जेब में जब मर्जी जाओ, पैसे भी है, किसी से मांगना भी नहीं है, और जब मर्जी बंद करके चले जाओ। तो इसलिए मैंने एक साल वहाँ ये रेडीमेड का कपड़े का धंधा वहाँ सब करते रहे। और उसके बाद तो फिर मुझे जब यहाँ आना ही था, एटी में जब प्रोग्राम बना, तो एटी में ही आया था, दिसंबर का महीना था शायद, मैं जहाँ तक से याद है, और फिर 81 का तो ये मेला ही था, तो मैं पहले ही आया था 24-25 तारीख, एक डेट याद नहीं है। एटी में दिल्ली में आया और एक दो दिन रुका, और 80 में ही मैं मधुबन आ गया था। उसके बाद तो 81 की मुरलियां फिर यहाँ ही सुनी, तब से तो मेरा अधिक से अधिक पार्ट सेवाओं का रहा, क्योंकि उसी समय जब मुरली चलती थी उसी समय पार्टियों का आना और जाना दोनों होता था, तो आधा घंटा मुश्किल से मैं ओम शांति भवन में बैठ के मुरली सुनते थे और फिर सेवाओं में ही रहते थे अधिक से अधिक। अभी तो सेवाएं उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है, पूरे अभी तो लेबर्स इतने सारे बढ़ गए हैं, तो सब लेबर्स करते हैं, लेकिन उन दिनों में पूरे मध्य पांडव भवन की सफाई का काम, जो खिड़की या नहीं, उस समय बहुत कम, एक हमारे पास कोई नहीं थे, एक ही वो सफाई ट्रेनिंग 2 घंटे में करके जाती थी सवेरे, बस उतना ही था। बाकी पूरे पांडव भवन की सफाई वगैरह करना, ये सब सेवाएं अपने हाथों से करते थे। और जब पार्टियां इतनी आती थी, सबका सामान पहले तो हम लोग बस के ऊपर चढ़ के सामान उतारते भी थे, और फिर साइड में भी रख करके सबका हर एक कमरे में पहुंचाते भी थे दौड़ दौड़ के। और अकेले ही होते थे, दो लोग होते नहीं। अब बड़ी गाड़ी कौन सी होती, जो आज हम देखते हैं जो वही गाड़ी है, अभी भी वही गाड़ी है, जिसमें 10 या 12 लोग, 8 से कम होते नहीं लेबर, वो धक्का लगा के जाते हैं सामान लेके, वो अकेले ही खींच के ले जाते थे। उसमें तो
जैसे ये मना असली था, उस असली जैसे यही ताकत थी। तो बाबा से आपने पर्सनल मुलाकात में कौन से वरदान मिले आपको बाबा से?
पर्सनल मुलाकात तो उन दिनों में तो अलग ही था, और हर एक को मिलते भी थे। तो जितने बार बाबा से हम मिले, लगभग सिमिलर आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे अपनी योग की शक्ति से औरों का कल्याण करेंगे, और आगे बढ़ने का ही और बाप में निश्चय है, इसलिए आगे बढ़ रहे हो, यही लगभग यही स्लोगन होते थे।
आपका दीदी और दादी जी के साथ का क्या अनुभव रहा?
दीदी के साथ में तो ज्यादा इतना अनुभव नहीं रहा है, थे तो उस समय, लेकिन सेवादारियां सब जाके वो दीदियों से नहीं मिलते थे, पर बाद में फिर दादी के साथ में अच्छा संबंध रहा। दादी के साथ में, दादियां उन दिनों में तो मधुबन में एक एक छोटी छोटी चीज भी दादी देखती थी, उसके कारण कई बार हमारे डिपार्टमेंट में भी आकर के पूछती भी थी कैसे चल रहा है, और कई बार तो इस प्रकार से आती थी कि आप क्या कर रहे हो पता भी न पड़े, और चुपचाप जैसे आके घुस के डिपार्टमेंट में अंदर तक चली जाती थी। हम कई बार देख भी नहीं पाते थे, और दादी जब रिटर्न जा रही होती थी तब देखते थे कि दादी चुपचाप देख के और वापस चली गई है। तो इस प्रकार से दादियों से मिलना होता था, कोई भी काम होता था। वैसे हमारे साथ में तो अशोक भाई रहते थे, तो वही करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो फिर कोई भी काम होता था या कोई चीज चाहिए होती थी तो दादी के साथ में या यीशु दादी के साथ में मिलते थे। और एक बार का है, जब मैं पहरे दे रहा था, विशाल भवन में था उस समय, तो एक माता ने उधर से कूद गई थी, फिर मैं रात में जाके सीधे गया, संजय को बताया कि भाई ऐसे ऐसी बात हो गई, तो दादी ने सीधा ऐसे बुलाया कमरे में ही कि क्या हुआ, तो मैंने बताया जो भी था, तो बोला जाओ उसको कैसे भी करके लेके आओ। फिर गए, दीवार के बाहर थी वो, खोल के फिर नीचे थी, उसको उठा के लेकर के आए, पिता बताया ठीक हो गया, उसको ज्यादा कुछ लगा भी नहीं था। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे हम डायमंड हॉल में भी ये चिल्लाने लगते ना, लगता था ऐसे ही लगता था, मैं था बैठा, मैं देखा नीचे, और सामने वो 8 नंबर से निकली, नीचे जा रही है। इस प्रकार से बहुत बार दादियां तो एक एक चीज, कमरे की सफाई कैसी हुई है। एक बार का है, सफाई कमरे, पूरा सीजन शुरू होने वाला था, तो दादी ने पहले बोलते थे कि मैं आऊं तुम्हारे मकान में आऊं, मैं कहा जी दादी आ जाइए, सब रेडी है, मैं कहा ठीक है हाँ रेडी है। तो उससे पहले एक्चुअली मुन्नी जाती थी, लेकिन उस समय मुन्नी बहन नहीं गई, तो दादी सी डायरेक्ट आई, तो मैं सारा घर तो साफ था, सब कुछ सफाई था, लेकिन वो होल्ड ड्रॉप लगाते हैं ना दरवाजे में कुंडी, तो दादी फिर वहां ऐसे देखी कि ये देखो तो इतनी मैं देखता था कि दादियों का एक एक व्यक्ति पर, जैसे एक एक ब्राह्मण परिवार पर नजर रखती थी दादी, कैसे चल रहा है। गुप्त रूप में डिपार्टमेंट में जाने का मतलब क्या है कि हर प्रकार से नजर रखना, और एक एक चीज पर नजर रखना, उनकी नजर से कुछ भी बच के नहीं जाता है। जैसे आजकल के उसमें मोदी बोल रहा है ना, मोदी कि हमारा उनके पर भी नजर है, उनको भी मैं देख रहा हूँ, पीछे कैमरे लगा के देख रहा हूँ, कल ही भाषण हो रहा था। तो दादियों का भी एक एक ब्राह्मण बच्चे पर 24 घंटे नजर रहती थी कि कहीं किसी प्रकार से चलन से अलग तो नहीं जा रहा है।
वर्तमान में आपके जो सेवा साथी उनमें क्या विशेषता है और उन विशेषताओं का कैसे आप उपयोग करते हैं?
सेवा साथियों में तो बहुत विशेषताएं हैं। सारा दिन हम देखते हैं, सारा दिन लगन पढ़ाई में ही लगे हैं, सेवाओं में भी जो मिल रही है सेवाएं, जो सेवा एक बार दे दो तो वो सेवाएं तो करते ही हैं, शांत हैं, रहते हैं सेवा साथी। सभी विशेषताओं से संपन्न है, भरे हुए। हम तो पढ़ाई में भी उनके भेंट में तो अभी भी हमारा उतना ही है जो पहले था, लेकिन हाँ अपनी दिनचर्या बनी हुई है तो उस दिनचर्या के अनुसार सुबह 2:30 बजे से शुरू हो जाती है और रात 9-10 बजे तक जो चलती है उसी अनुसार चल रहे हैं।
आप में कोई पहले ऐसे संस्कार थे जो आपके पुरुषार्थ में बाधक थे और अज्ञान में आने के बाद उन संस्कारों पर आपने कैसे जीत प्राप्त की?
हाँ, पुरुष उसमें तो था कि बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता था, कोई भी सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, कोई तुरंत जवाब। और वो अभी भी कभी कभी कोई कुछ बोलता है तो कहाँ कहाँ हो जाता है, लेकिन अभी उसको काफी हद तक कंट्रोल है। और उसको कंट्रोल करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है कि थोड़ा सा सुन लीजिए, धीरज कर रख लीजिए, तो उससे फर्क पड़ता है। तो वो है कि उस समय थोड़ा सेकंड, कुछ मिनट टाल दीजिए तो आपस में जो दो बर्तन टकराते हैं उनसे बच जाते हैं।
आप बाबा के प्यार में आंसू कब आए थे?
प्यार में तो आंसू खैर आए हैं कभी कभी, जब अधिक स्नेह में। एक बार मेरे को याद है, वैसे तो हम बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, एक बार थके हुए भी होंगे या क्या था मुझे इतना याद नहीं है, मैं झोपड़ी में बैठा था और बाबा से बातें कर रहा था, मिलन मना रहा था, तो उस समय मेरे को आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो उसी समय निर्वेर भाई जी भी झोपड़ी में आए थे, तो जब मैं नहीं रुक रहे थे तो मैं भी, वो भी निकल के बाहर आ गए, मैं भी आ गया। तब उन्होंने पूछा था कि क्या हो रहा था, क्यों रो रहे थे। मैं कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा से बातें करते करते और कैसे वो चले गए क्या है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन प्यार में उस समय बहुत आंसू आए थे।
कोई आप अपने राजयोगी जीवन के प्रेरणादायी अनुभव साझा कीजिए जिससे हमको कोई विशेष प्रेरणा और मिल सके। वैसे तो बहुत सारी मिल गई है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रेरणा मिले या ब्राह्मण जीवन की उन्नति हमारी कैसे तीव्र गति से हो?
तीव्र गति का तो साधन सबसे सहज और सस्ता आज के दिन में यही है, जिससे आप हम सभी पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। और समय जो संगम का अनमोल खजाना कहा जाता है, सबसे बहुमूल्य खजाना, समय, संकल्प, श्वास, ये बचाए जा सकते हैं यदि हम आजकल जो फ्री मिल रहा है ना इन सब से जितना हम कम समय में इनको इनसे यूज करें, समय बचाएं, क्योंकि समय ही वो अनमोल खजाना है जो फिर लौट के ना आना है। एक सेकंड जो बीत गया वो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। उसके लिए भी कई कहानियां सुनी भी है, कहते हैं कि वो हंस और कुछ चिड़िया बैठे थे पेड़ पर, आया कि इस समय जो बने कूदेगा कुएं में फरिश्ता बनेगा। एक ने तो कूद गया और एक दूसरा जो उसका जोड़ा था वो देखा फरिश्ता बन के उड़ रहा है, दूसरा जो फिर कूदा तो उसकी टांगे टूट गई। तो समय हमारे संगम का समय, ये समय जो इस समय प्रैक्टिकल संगम का चल रहा है और अंतिम समय चल रहा है, हम सभी पूर्वज भी हैं और आधार मूर्त भी हैं, आधार भी हैं सृष्टि के। क्योंकि इसका अभ्यास मैं बार बार यही करता हूँ कि सारे सृष्टि की जो जितना बड़ा हम कल्प का झाड़ देख रहे हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका और सब कोना तक इतना बड़ा झाड़ है, तो उसकी जड़ें भी उतनी मजबूत हैं जितना झाड़ ऊपर होता है, जड़ें उतनी ही लंबी होती हैं नीचे। वो गुप्त जड़ें जिनको बाबा बोलता है, वो गुप्त जड़ें और कोई नहीं है, ये ब्राह्मण परिवार ही है। और अभी हमारे साथ में तो कुछ जड़ें बाकी है जो हमारे साथ हैं, क्योंकि हम पेड़ को देखते हैं कि इतनी मोटी जड़ होती है, वो पानी मिट्टी से नहीं ले सकती है। उस जड़ के साथ बहुत छोटी छोटी कोमल कोमल जड़ें निकलती हैं, वो पानी खींच करके मोटी जड़ों के द्वारा फिर पूरे झाड़ को पानी देती हैं। तो वो हम छोटी छोटी जड़ें भी हैं, हमारी दादियां मोटी मोटी हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के पूरे कल्प को थमा के रखा है, रोक रखा है। अगर जड़ निकल जाए तो थोड़े से में ही झाड़ गिर जाता है। तो ऐसे ही ये खड़ा जब तक है, जब तक हम सभी इस मिट्टी से लेकर के पानी उस झाड़ को दे रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं, तो ये हमारी संकल्प शक्ति मनसा शक्ति जो है, जैसे जैसे हम सोचते हैं संकल्प करते हैं इस झाड़ को हरा भरा करते हैं। क्योंकि एक संकल्प भी बाबा ने कहा था कि यदि आप अपने मन में एक संकल्प करते हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे इस संसार को आपने शांति का दान दिया, तो हमारा एक एक श्वास, एक एक संकल्प जो है सारे सृष्टि को बदलने के निमित्त है। जैसा भी हम करेंगे, चाहे अच्छा करेंगे या जो संकल्प करेंगे, वो हम संसार को सकाश दे रहे हैं, वायुमंडल को वैसा हम बना रहे हैं। तो इसलिए ये समय अनमोल है, अमूल्य है, इसलिए अपने श्वासों को, संकल्पों को, समय को व्यर्थ न जाने दें। और व्यर्थ गवाने का साधन ये बहुत अच्छा अच्छा हम लोगों को सभी के जेब में भर दिया गया है, चाहे बाबा को कहो दिया या माया ने दिया है। जितना कम यूज करके, जितना मत काम सेवा है उससे, उतना ही यूज करें तो हम आगे काफी आगे जा सकते हैं।
तो आपको यहाँ आना कैसा लगा अभी?
बहुत अच्छा लगा भाई।
तो अच्छी चीज,
अरे हम आने को क्या थे, लेकिन भाई साहब ने हाथ पकड़ के बड़े प्यार से आपको आना है तो हम ना नहीं बोल सके।
ब्राह्मण तो हाँ जी कहते हैं ना सदा।
हाँ।
तो आपको अच्छा लगा ना आज? तो कल भी आएंगे ना, माना रोज ही आएंगे ना? अभी तो
रोज में मेरा फिर दिनचर्या रूटीन में जब समय मिलेगा जरूर आऊंगा।
धीरे धीरे रेगुलर हो,
अपना रूटीन बना हुआ है, इसलिए कोशिश करूंगा।
बिल्कुल, धन्यवाद।
ओम शांति। तो हमारे आदरणीय चंद्रपाल भाई जी हम सभी के मध्य पधारे और अपने लौकिक अलौकिक अनुभवों को हम सभी के प्रति शेयर किया और दादियों के साथ के अपने अनुभव हम सभी के सामने रखे। और इस जीवन में वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है, उसके लिए आपने हमें प्रेरणा भी दी कि वर्तमान समय का जो विशेष अटेंशन होना चाहिए वो हमारा समय पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि समय अनमोल है, जो एक बार हाथ से गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हम सभी के बीच में आए, अपने अनुभवों को हम सभी के प्रति शेयर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।